नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में कह सकते हैं गोता लगाने वाले हैं, जिन्होंने समाज को समझने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। ऑगस्ट काउंटे, पूरा नाम तो खैर काफी लंबा था, इसिडोर मैरी ऑगस्ट फ्रांसवा जेवियर कोम्टे, 1798 से 1857 तक। अक्सर उन्हें कहते हैं समाज शास्त्र का जनक।
हाँ बिल्कुल।
पर देखिए, दिलचस्प बात यह है कि जिस इंसान ने समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखी, उसी ने बाद में एक तरह का, क्या कहें, नया धर्म बनाने की कोशिश की। तो आज हम समझेंगे कि ये विरोधाभास सा क्यों लगता है और काउंटे आज भी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका जो शुरुआती विचार था वो कितना क्रांतिकारी था उस जमाने के हिसाब से। मतलब 18वीं सदी का अंत और 19वीं की शुरुआत, तब समाज को या तो धर्म या परंपरा या फिर राजा महाराजा, बस इसी नजरिए से देखते थे। ये सोचना कि भाई समाज को भी विज्ञान के तराजू पर तौल सकते हैं, उसके नियम खोज सकते हैं जैसे प्रकृति के खोजते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी, सच कहूं तो चौंकाने वाली बात थी उस समय।
हाँ बिल्कुल। तो चलिए थोड़ा उस माहौल को महसूस करते हैं जिसमें कोम्टे जी रहे थे। फ्रांस में अभी अभी क्रांति हुई थी 1789 वाली, राजशाही तो गई लेकिन स्थिरता वो नहीं आई थी। नेपोलियन के युद्धों ने पूरे यूरोप को हिला रखा था, पुरानी व्यवस्थाएं, पुराने विश्वास, सब पर सवाल।
सही।
और दूसरी तरफ वो औद्योगिकरण शुरू हो रहा था, शहर बढ़ रहे थे, एक बिल्कुल नई तरह की सामाजिक उथल पुथल थी।
हाँ, और बौद्धिक जगत में भी मतलब तूफान सा था। एक तरफ ज्ञानोदय वाले विचारक जो तर्क और विज्ञान की बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ परंपरावादी ताकतें भी थीं। कोम्टे के शुरुआती गुरु थे हेनरी डी सेंट साइमन, एक यूटोपियन समाजवादी। उनसे उन्होंने ये आइडिया लिया कि समाज को वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित किया जा सकता है।
अच्छा।
फिर स्कॉटिश ज्ञानोदय के विचारकों का भी असर था, जैसे डेविड ह्यूम, एडम स्मिथ, और सोचिए उसी दौर में जॉन स्टुअर्ट मिल थे, कार्ल मार्क्स थे, हर्बर्ट स्पेंसर, मतलब क्या जबरदस्त माहौल रहा होगा विचारों का।
वाह। और कोम्टे की अपनी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। जन्म हुआ दक्षिणी फ्रांस के मॉन्टपेलियर में। परिवार था पक्का कैथोलिक और राजभक्त। पर कहते हैं ना, उन्होंने बहुत जल्दी ही घर की मान्यताओं को ठुकरा दिया। पेरिस के मशहूर इकोले पॉलिटेक्निक गायपढ़ में, वहां गणित और विज्ञान में तो वो कमाल के थे।
हाँ, वहीं से वैज्ञानिक सोच की नींव पड़ी।
मगर उनका वो बागी तेवर भी वहीं दिखा। एक छात्र आंदोलन में हिस्सा लिया और निकाल दिए गए।
हाँ, और कभी औपचारिक डिग्री पूरी नहीं की उन्होंने।
ये दिलचस्प है, एक तरफ एकदम कड़ा वैज्ञानिक प्रशिक्षण, दूसरी तरफ व्यवस्था से टकराने का स्वभाव।
बिल्कुल, शायद इसी मिश्रण से उनके विचारों में वो अनोखी बात आई। सेंट साइमन के साथ उनका काम करना 1817 से 24 तक, वो भी अहम था, लेकिन फिर उनसे भी रास्ते अलग कर लिए। कोम्टे अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते थे, यू नो?
और निजी जिंदगी वो भी काफी उथल पुथल वाली रही। मानसिक स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएं थीं, कई बार नर्वस ब्रेकडाउन हुए। कैरोलिन मासिन नाम की महिला से शादी की, जिनका अतीत थोड़ा विवादित था, वेश्यावृत्ति से जुड़ा। इससे उस समय के समाज में काफी बदनामी हुई और रिश्ता भी मुश्किलों भरा रहा।
हाँ, और फिर उनकी जिंदगी में आई क्लॉटिल डी वॉक्स, एक बहुत गहरा पर कह सकते हैं अधूरा इश्क हुआ, और क्लॉटिल्ड की जल्दी मृत्यु हो गई 1846 में। इसने कोम्टे को अंदर तक तोड़ दिया। लेकिन इसी दुख और इसी भावनात्मक उथल पुथल से उनके जो बाद के विचार हैं, खासकर वो मानवता का धर्म वाला आइडिया, वो यहीं से निकला। ऐसा लगता है जैसे तर्क पर जो उनका पूरा दर्शन टिका था, उसमें अचानक भावनाओं का ज्वार आ गया हो।
समझ सकती हूँ। करियर के लिहाज से भी संघर्ष ही रहा ज्यादातर, कोई पक्की नौकरी नहीं मिली, गुजारे के लिए प्राइवेट ट्यूशन, पब्लिक लेक्चर, खासकर पेरिस में।
सही।
उनके काम को देखे ना तो दो हिस्से बिल्कुल साफ दिखते हैं। पहले हिस्से में वो प्रत्यक्षवाद और समाजशास्त्र की नींव रख रहे हैं एकदम वैज्ञानिक अंदाज में।
हाँ।
और दूसरे हिस्से में, खासकर क्लॉटिल की मौत के बाद, वो ज्यादा नैतिक और लगभग धार्मिक हो जाते हैं। प्रत्यक्षवाद को ही एक नए धर्म की तरह पेश करने लगते हैं।
बिल्कुल, और यही चीज उनकी किताबों में भी दिखती है।
हाँ, उनकी सबसे बड़ी देन मानी जाती है द कोर्स इन पॉजिटिव फिलोसफी, कोर द फिलोसफी पॉजिटिव, 1830 से 42 के बीच आई, 6 भारी भरकम वॉल्यूम में।
बाप रे।
शुक्रम समझाया। ये किताब ही समझिए समाजशास्त्र की बुनियाद है।
बिल्कुल। फिर 1844 में आई ए जनरल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म,
डिस्कोर्स सुर ले स्प्री पॉजिटिव, ये थोड़ी कह सकते हैं आसान भाषा में उनके प्रत्यक्षवादी दर्शन का सार थी। इसमें उन्होंने जोर दिया कि भाई अब समय आ गया है कि हम समाज को देवी देवताओं या काल्पनिक शक्तियों के आधार पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक सोच और सबूतों के आधार पर समझें। ज्ञान वही है जो देखा परखा जा सके, पॉजिटिव हो।
ओके, और फिर आता है उनका वो बाद का और सबसे ज्यादा विवादित काम, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, सिस्टम द पॉलिटिक पॉजिटिव, 1851 से 54 के बीच,
बिल्कुल
चार खंडों में।
हाँ, ये वाला ज्यादा विवादास्पद है।
इसमें उनका फोकस पूरी तरह मानवता के धर्म पर था। उन्होंने समाज को नए सिरे से गढ़ने का पूरा खाका पेश किया, अपना कैलेंडर, अपने रीति रिवाज, सब कुछ जो पारंपरिक धर्म की जगह ले सके।
हाँ, यहीं आकर बहुत से लोग कॉम्टे से थोड़ा किनारा कर लेते हैं।
सही, चलिए उनके इन बड़े विचारों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहले प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, प्रत्यक्षवाद। आखिर इसका मतलब क्या था कॉम्ट के लिए? क्या सिर्फ वही सच है जो आंखों से दिखे?
हाँ, काफी हद तक यही मतलब था। कॉम्टे का कहना था कि देखो, असली ज्ञान हमें सिर्फ दो तरीकों से मिल सकता है। पहला, चीजों को ध्यान से देखकर, उनका अवलोकन करके, और दूसरा, उन अवलोकनों पर तर्क लगाकर।
अच्छा,
अटकलें लगाना, सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना, या ये मानना कि कोई अनदेखी शक्ति सब कुछ चला रही है, ये सब उनके हिसाब से ज्ञान का रास्ता नहीं है। ज्ञान पॉजिटिव यानी सकारात्मक, या कहिए निश्चयात्मक, तभी होता है जब वो तथ्यों पर आधारित हो।
तो आज जो हम डेटा ड्रिवन अप्रोच की बात करते हैं, उसकी शुरुआती झलक यहाँ दिखती है।
कह सकते हैं बिल्कुल, नींव वहीं से पड़ी एक तरह से।
दिलचस्प। और इसी प्रत्यक्षवादी नजरिए से उन्होंने इतिहास को देखा अपने तीन चरणों के नियम में, लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस।
बिल्कुल, कॉम्टे ने कहा कि देखो, इंसान का दिमाग और समाज दोनों ही तीन चरणों से गुजरकर विकसित होते हैं। पहला है धार्मिक चरण, थियोलॉजिकल स्टेज, जब हम हर घटना के पीछे किसी देवी देवता या अलौकिक शक्ति का हाथ मानते हैं, बाड़ाई जरूर कोई देवता नाराज है टाइप का।
हाँ।
दूसरा है आध्यात्मिक या तत्वमीमांसा चरण, मेटाफिजिकल स्टेज, इसमें हम देवी देवताओं की जगह अमूर्त शक्तियों या सिद्धांतों से चीजों को समझाते हैं, जैसे प्रकृति का नियम है या नसीब है।
ओके।
और तीसरा, आखिरी और सबसे उन्नत चरण है सकारात्मक या वैज्ञानिक चरण, पॉजिटिव स्टेज, यहाँ हम घटनाओं को समझने के लिए वैज्ञानिक नियमों, अवलोकन और तर्क का सहारा लेते हैं। कॉम्टे का मानना था कि यूरोपीय समाज अब इस तीसरे चरण में प्रवेश कर रहा है, या उसे करना चाहिए।
ये तो इतिहास को देखने का बिल्कुल नया चश्मा था उस जमाने में। क्या हम आज भी इन चरणों की झलक देखते हैं, आपको लगता है?
हाँ, जरूर देखते हैं। कई बार हम आधुनिक समाज में भी देखते हैं कि वैज्ञानिक समझ होने के बावजूद लोग मुश्किलों का कारण किसी अदृश्य शक्ति या भाग्य को मान लेते हैं, है ना?
हाँ, होता है।
या फिर बड़ी बड़ी समस्याओं का हल किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों में ढूंढा जाता है, बिना ठोस सबूतों के। तो हाँ, ये चरण शायद उतने साफ सुथरे न हों जितना कॉम्टे ने सोचा था, पर मानव सोच के इन पैटर्न्स को पहचानने में ये नियम आज भी मददगार हैं, मेरे ख्याल से।
और इसी तीसरे यानी वैज्ञानिक चरण के लिए उन्हें एक नए विज्ञान की जरूरत महसूस हुई, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी।
एकदम सही, कॉम्टे ने ही ये शब्द गढ़ा, सोशियोलॉजी, और उन्होंने इसे विज्ञानों की रानी कहा,
क्वीन ऑफ साइंसेस।
हाँ, उनका तर्क था कि देखो, समाज मानव जीवन का सबसे जटिल पहलू है, इसलिए इसे समझने वाला विज्ञान भी सबसे जटिल और महत्वपूर्ण होगा। जैसे भौतिकी फिजिक्स पदार्थ के नियम बताती है, जीव विज्ञान बायोलॉजी जीवन के, वैसे ही समाजशास्त्र समाज के नियम बताएगा।
लेकिन क्या समाज को सचमुच भौतिकी या रसायन शास्त्र की तरह पढ़ा जा सकता है? समाज तो इंसानों से बनता है जिनके अपने इरादे होते हैं, भावनाएं होती हैं, आजाद इच्छाएं।
ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और कॉम्टे के बाद भी इस पर बहस चलती रही है आज तक। कॉम्टे का मानना था कि हाँ, समाज के भी अपने नियम होते हैं जिन्हें वैज्ञानिक तरीके से खोजा जा सकता है, शायद उतने सटीक नहीं जितने भौतिकी के नियम, पर फिर भी पैटर्न और प्रवृत्तियां तो पहचानी ही जा सकती हैं।
उनका जोर सामूहिक व्यवहार और सामाजिक संरचनाओं पर ज्यादा था, व्यक्ति के भावनाओं पर थोड़ा कम।
अच्छा,
उन्होंने विज्ञानों का एक क्रम भी बताया था, हायरार्की ऑफ साइंसेस।
हाँ, ये भी उनके व्यवस्थित दिमाग की उपज थी, एक सीढ़ी की तरह। सबसे नीचे सबसे सरल और आधारभूत है गणित, उसके ऊपर खगोल विज्ञान, फिर भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, और सबसे ऊपर सबसे जटिल और बाकी सब पर निर्भर समाजशास्त्र।
वाह।
हर ऊपर वाला विज्ञान अपने नीचे वाले विज्ञान के सिद्धांतों का इस्तेमाल करता है, ये दिखाता है कि वो समाजशास्त्र को कितनी ऊंची जगह देते थे।
अगर कॉम्टे की तुलना उनके जमाने के दूसरे बड़े विचारकों से करें, जैसे मार्क्स या स्पेंसर, उनमें क्या फर्क था?
देखिए, मार्क्स का ध्यान मुख्य रूप से वर्ग संघर्ष और आर्थिक प्रणाली पर था।
हाँ,
स्पेंसर ने डार्विन के विकासवाद को समाज पर लागू किया और व्यक्ति की अनुकूलन क्षमता मतलब अडैप्टेशन पर जोर दिया। कॉम्टे इन सबसे अलग थे। उनका मुख्य सरोकार था सामाजिक एकता, सोशल सॉलिडारिटी, कैसे बनी रहे समाज में, व्यवस्था, ऑर्डर और प्रगति, प्रोग्रेस एक साथ कैसे आए।
अच्छा, ये उनका नारा भी था शायद, व्यवस्था और प्रगति।
बिल्कुल, यही उनका आदर्श वाक्य था और उनका मानना था कि ये काम वैज्ञानिक विशेषज्ञ ही कर सकते हैं जो समाज के नियमों को समझते हों। इसलिए उनकी सोच थोड़ी लोकतांत्रिक कम और तकनीकी ज्यादा थी, मतलब वैज्ञानिकों का राज हो एक तरह से, टेक्नोक्रेटिक।
और इसी सोच का असर उनकी विरासत पर भी पड़ा होगा जाहिर है।
बिल्कुल, उन्हें समाजशास्त्र का जनक तो माना ही जाता है और उनका काम इस विषय की शुरुआत के लिए बेहद अहम था, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया भर में और खासकर लैटिन अमेरिका में उनके प्रत्यक्षवादी विचारों का बहुत गहरा असर पड़ा। आप सोचिए, ब्राजील ने तो अपने झंडे पर ही कॉम्ट का नारा ऑर्डम ए प्रोग्रेसो, व्यवस्था और प्रगति लिखवा लिया।
अरे हाँ, ये तो वाकई कमाल की बात है, ब्राजील के झंडे पर।
जी हाँ,
पर क्या समाजशास्त्र ठीक वैसा ही रहा जैसा कॉम्टे ने सोचा था, या बदला भी?
नहीं बदला। बाद के जो बड़े समाजशास्त्री हुए जैसे एमाइल दुर्खीम और मैक्स वेबर, उन्होंने कॉम्ट के काम को आगे तो बढ़ाया लेकिन उसमें कई जरूरी बदलाव भी किए। उन्होंने माना कि समाज सिर्फ बाहरी नियमों से नहीं चलता बल्कि लोगों के आपसी अर्थों, मूल्यों, उनकी संस्कृति, इनसे भी बनता है।
सब्जेक्टिविटी भी जरूरी है।
लेकिन कॉम्टे का ये जोर कि समाज का अध्ययन सबूतों और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, मतलब एम्पिरिकल रिसर्च पर, वो चीज आज भी सामाजिक विज्ञानों का, आप कह सकती हैं, मूल मंत्र है।
हाँ, ये बात तो है। उनके कुछ मशहूर कथन भी हैं जो उनकी सोच को अच्छे से दिखाते हैं। एक तो आपने बताया व्यवस्था और प्रगति।
हाँ, और एक उनके बाद के दौर का है जो उनके मानवता के धर्म वाले विचार से जुड़ा है, प्रत्यक्षवाद का पवित्र सूत्र। प्रेम सिद्धांत के रूप में, व्यवस्था आधार के रूप में और प्रगति लक्ष्य के रूप में।
लव एज अ प्रिंसिपल, द ऑर्डर एज अ फाउंडेशन एंड प्रोग्रेस एज अ गोल।
जी, यहाँ वो वैज्ञानिक व्यवस्था को मानवतावादी लक्ष्यों, प्रेम, परोपकार, इनसे जोड़ रहे हैं।
एक और है जो मुझे बहुत प्रासंगिक लगता है आज भी। किसी विज्ञान को समझने के लिए उसका इतिहास जानना आवश्यक है।
हाँ, टू अंडरस्टैंड अ साइंस इट इज नेसेसरी टू नो इट्स हिस्ट्री। ये ज्ञान के विकास को समझने पर उनके जोर को दिखाता है। बहुत जरूरी बात।
बिल्कुल।
और एक बहुत सीधा सादा पर गहरा कथन है, स्वयं को सुधारने के लिए स्वयं को जाने, नो योर सेल्फ टू इम्प्रूव योर सेल्फ। कॉम्ट के लिए इसका मतलब था कि मानवता को अगर प्रगति करनी है तो उसे पहले समाजशास्त्र के जरिए अपने आप को, यानी अपने सामाजिक नियमों को वैज्ञानिक ढंग से समझना होगा।
लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, कॉम्टे के विचार विवादों से परे नहीं थे, उनकी आलोचना भी जमकर हुई।
हाँ हाँ, बिल्कुल हुई। सबसे बड़ी आलोचना उनके कठोर वैज्ञानिकतावाद, साइंटिज्म की हुई। आलोचकों ने कहा कि भाई, आपने इंसानी जिंदगी की जटिलता, भावनाएं, कला, नैतिकता, इन सबको महज वैज्ञानिक नियमों में बांधने की कोशिश की है, ये ठीक नहीं है। मैक्स वेबर जैसे बाद के विचारकों ने कहा कि समाज को समझने के लिए सिर्फ बाहरी अवलोकन काफी नहीं है, लोगों के नजरिए, सब्जेक्टिविटी और उनके कार्यों के अर्थ, इंटरप्रिटेशन को समझना भी जरूरी है।
सही। और उनकी वो वैज्ञानिकों के राज वाली बात, टेक्नोक्रेसी, वो तो सुनने में ही थोड़ी डरावनी लगती है, लोकतांत्रिक नहीं लगती।
बिल्कुल, उनकी इस सोच में सत्तावादी, अथॉरिटेरियन रुझान साफ दिखते थे। एक ऐसा समाज जहां वैज्ञानिक पुजारियों का एक छोटा सा गुट तय करे कि समाज कैसे चलेगा, ये विचार तो लोकतंत्र के एकदम खिलाफ था। जॉन स्टुअर्ट मिल, जो शुरू में कॉम्टे के काफी बड़े प्रशंसक थे, वो भी बाद में उनके इन विचारों से डर गए थे।
अच्छा।
हाँ, मिल ने तो यहां तक लिखा कि कॉम्टे का जो बात का सिस्टम है वो मानव मस्तिष्क से अब तक निकले आध्यात्मिक और लौकिक निरंकुशता की सबसे पूर्ण प्रणाली जैसा है।
अरे बाप रे।
जी, और उनके समाज के खाके में महिलाओं की भूमिका भी काफी सीमित थी, जो उनके जमाने के पूर्वाग्रहों को दिखाता है।
अब फिर वो उनका मानवता का धर्म, उसका क्या हुआ, किसी ने माना उसे?
उसका तो काफी मजाक उड़ाया गया, सच पूछे तो। मशहूर वैज्ञानिक थे थॉमस हक्सले, उन्होंने इसे ईसाई धर्म रहित कैथोलिक धर्म कहकर खारिज कर दिया। कई लोगों को लगा कि कामटे की जो मानसिक अस्थिरता थी वो उनके दार्शनिक विचारों पर हावी हो गई थी बाद में। हालांकि कुछ छोटे छोटे समूह बने जिन्होंने इसे माना, पर ये विचार कभी मुख्यधारा में नहीं आ पाया। ऐतिहासिक जिज्ञासा ज्यादा बनकर रह गया।
उनके जीवन से जुड़े कुछ और दिलचस्प किस्से भी हैं। शायद आपने बताया था कि उन्होंने बाद में दूसरों को पढ़ना बंद कर दिया था।
ये सच है।
हाँ
हाँ, उसे वो कहते थे बौद्धिक स्वच्छता, सेरेब्रल हाइजीन।
क्या मतलब?
उनका मानना था कि भाई, मैंने दुनिया का जो जरूरी ज्ञान है वो हासिल कर लिया है, अब और कुछ पढ़ने से मेरे मौलिक विचारों में मिलावट हो जाएगी।
अजीब बात है,
है ना? जो इंसान ज्ञान के वैज्ञानिक आधार की बात कर रहा है वो खुद नए ज्ञान से एक तरह से मुंह मोड़ ले।
और ये भी कि समाजशास्त्र की नींव रखने वाले ने खुद कभी फील्ड में जाकर कोई शोध नहीं किया, कोई रिसर्च नहीं की।
हाँ, ये भी एक विडंबना ही है। उनका सारा काम सैद्धांतिक था। जो भी मौजूदा ऐतिहासिक जानकारी थी और अपने तर्क थे उसी पर आधारित था। वो एक विचारक थे, शोधकर्ता नहीं। और उनके मानवता के धर्म में तो उन्होंने बाकायदा एक कैलेंडर बनाया था जिसमें न्यूटन, शेक्सपियर जैसे महान लोगों को संतों की तरह पूजा जाना था।
सच में?
हाँ, और पूजा पाठ के नए तरीके भी ईजाद किए थे। क्लॉटिल डी वॉट्स की याद को उन्होंने इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया था।
तो कुल मिलाकर ऑगस्ट कॉम्टे एक बेहद जटिल और विरोधाभासी विचारक थे। एक तरफ वैज्ञानिक कठोरता पर जोर, दूसरी तरफ एक नए किस्म के धर्म की स्थापना की कोशिश। पर इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने समाज को देखने का एक नया दरवाजा खोला। सामाजिक दर्शन से आधुनिक सामाजिक विज्ञान तक का पुल बनाया उन्होंने।
बिल्कुल, उनका यह बुनियादी विचार कि सामाजिक जीवन का व्यवस्थित अध्ययन हो सकता है और उस समझ के आधार पर समाज को बेहतर बनाया जा सकता है, ये आज भी बहुत प्रासंगिक है। भले ही उनके दिए गए समाधान जैसे वो टेक्नोक्रेसी या मानवता का धर्म वो हमें आज सही ना लगें, पर उनका उठाया गया सवाल आज भी हमारे सामने है।
और यही हम आज की बातचीत को रोकते हैं श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ। कॉम्टे चाहते थे कि वैज्ञानिक विशेषज्ञ समाज को व्यवस्था और प्रगति की राह दिखाएं। आज की दुनिया जहां जानकारी और गलत जानकारी दोनों का सैलाब है, वहां हमारे समाजों को आकार देने में वैज्ञानिक समझ और विशेषज्ञ सलाह की क्या भूमिका होनी चाहिए? हम विशेषज्ञों की राय और लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर। प्री रिकॉर्डेड, फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।